हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू द सेमल डिवोटीज। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 27 नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याद् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य जदवो च सदा विधित्सु त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि इसके बाद 8 श्लोक को बीच में छोड़ दूंगा और 30वें श्लोक से फिर चलो इत्थम दितिर्यग ऋषि देव झसावतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पाशि जुगान वृत्तं छन्नः कलौ जदभवस्त्रिजुगोथ सत्वं नैतन्मनस्तव कथा सुविकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्ष शोक भयैषणार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः फिर 27 श्लोक से नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जंतर्जथात्म सुहृद जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो रिवते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। इसके पहले श्री प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से कहे कि क्वाहम रजः प्रभवई शतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया जन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। श्री प्रहलाद महाराज भगवान से बोले, हे प्रभो, मैं कहां अधम वंश में जन्म लिया हूं, मैं रजोगुणी परिवार में जन्म लिया हूं और जिसमें तमोगुण अधिक है ऐसे वंश में, और कहां है आपकी कृपा। जिस प्रसाद को, जिस कृपा को आपने श्री ब्रह्मा के प्रति भी नहीं दिया, भगवान शिव को भी नहीं दिया जो कृपा, और श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया, कौन सी कृपा? कि आपने मेरे सिर पर अपना हस्त कमल रखा, यह अनुपम प्रसाद आपने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, शिव जी को भी नहीं दिया, लक्ष्मी जी को भी नहीं दिया, मुझको दिया। तो इस पर भगवान कह सकते हैं प्रहलाद महाराज से किस कारण से मैं कृपा किया, क्या मुझ में ये दृष्टि है कि कोई नीच है, कोई उच्च है, पर है, अवर है। पर का अर्थ है श्रेष्ठ और अवर का अर्थ है निकृष्ट, छोटा, नीच। क्या मुझमें ये सब बुद्धि है? प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, नैसा परावर मति ही, ऐसा परावर मति ही आप में नहीं है। किसी नीच पर भी इतनी कृपा बरसा देना और परम उत्तम ब्रह्मा आदि को भी कृपा न देना, यह आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। आप में ये दृष्टि नहीं है कि ब्रह्मा आदि उत्तम है और यह असुर नीच है। प्रहलाद जी अपने को कहते हैं, आप में ये बुद्धि नहीं है, एते ब्रह्मादय उत्तमा है अयम असुरो नीच इति ऐसा परावर मतिर जंतो प्राकृतस्य जथा तथा भवतो नैव स्यात्। जैसे प्राकृत जीव में, मनुष्य में या देवता में ये बुद्धि होती है कि यह उत्तम व्यक्ति है, यह नीच व्यक्ति है, इसको कहते हैं परावर मति, पर और अवर सोचने की मति। समस्त प्राकृत जीवों में ये बात है, देखते हैं, लेकिन भगवान में यह बुद्धि नहीं है, यह विचार नहीं है। ऐसा परावर मति भवतो न जथा जंतो। अत्र हेतु, इसका कारण क्या है कि भगवान जगतः आत्मा सुहृद, आप समस्त जगत के, समस्त जीवों के, जगत जगता नाम जीवा नाम आत्मा सुहृद, आप सभी जीवों के परम प्रिय हैं और सबके अकारण हितैषी हैं, हित करने वाले हैं। तो आप में यह बुद्धि नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंगों में उत्तम और हीन की भावना नहीं करता है, हमारी उंगली है और पैर है और अंग है, तो कभी हम इन अंगों में यह निकृष्ट है या उत्कृष्ट है ये भावना नहीं करते हैं, सबके प्रति समान रूप से भाव रहता है। तो भगवान में यह विचार नहीं है कि यह बहुत उत्तम व्यक्ति है और यह अधम है, क्योंकि वे सबके हितैषी हैं और सबके परम प्रिय हैं। तो भगवान नृसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछे, जब मेरी सम बुद्धि सबके प्रति है तो तुम पर जैसी मैंने कृपा किया तो ऐसी सब पर कृपा क्यों नहीं करता, तुमको जैसा प्रसाद मिला है वैसा प्रसाद सबको क्यों नहीं मिलता। तो इसका उत्तर देते हैं, संसेवया सुतरो रिवते प्रसाद सेवा न रूप मुदयो न परावरत्व। सुर तरोह युवा जैसे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष कल्प का अर्थ होता है इच्छा संकल्प, उसमें सम उपसर्ग लगा है समकल्प, उस सम को थोड़ा हटा करके कल्प तरु कहते हैं। कल्प तरु का अर्थ है जो इच्छा के अनुसार फल दे, संकल्प के अनुसार फल दे उसको कल्प तरु कहते हैं। तो ऐसा वृक्ष है मनुष्य लोक में नहीं है, कोई भी झाड़ ऐसा नहीं है, पेड़ नहीं है, देवताओं के लोक में ऐसे वृक्ष हैं, तो इनको सुर तरु कहते हैं। सुर देवता, तरु वृक्ष, सुर तरु। तो सुर तरु का देव वृक्ष का कल्प तरु का यह स्वभाव होता है, वह उसकी छाया में कोई व्यक्ति आता है और आ करके कुछ मांगता है, इच्छा करता है, तो वह वृक्ष दे देता है उसको। परंतु कोई उसकी छाया में न आवे, आश्रय न ले, तो उसको कुछ नहीं देता है। तो हे प्रभो, आप भी सुर तरोह इव कल्प वृक्ष की तरह हैं, जो कोई व्यक्ति आपका सेवन करता है, आपकी शरण में आता है, तो उसकी सेवा के अनुसार जैसा आपका आश्रय लिया, जैसी भक्ति किया, उसके अनुसार धर्म आदि का उदय होता है, उसके अनुसार उसे कुछ वस्तुएं मिलती हैं। कल्प वृक्ष की छाया में आकर भी व्यक्ति जैसी इच्छा करेगा वो कल्प वृक्ष वैसा ही फल देगा, जैसा वो संकल्प करेगा मांगेगा वो उसके अनुसार देगा। और आश्रय लेने पर, छाया में आने पर वो फल देता है। इसी तरह भगवान किसी जीव की इच्छा पूरी करते हैं जब वह भगवान की शरण में आता है। तो यह जैसे कल्प वृक्ष किसी को फल देता है, किसी को नहीं देता है, शरण में आने वाले को फल देता है, बहुत सी वस्तुएं देता है, और शरण में नहीं आने वालों को नहीं देता है। तो यह कल्प वृक्ष की विषमता नहीं हुई, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कल्प वृक्ष विषम है। पर कोई भी व्यक्ति, चाहे ऊंच हो नीच हो, धनी हो गरीब हो, कोई भी हो, अगर कल्प वृक्ष के नीचे कुछ मांगता है, संकल्प करता है, तो कल्प वृक्ष उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। इसी तरह है प्रभु, आपकी शरण में जो आता है और आपसे कुछ मांगता है, तो उसकी इच्छा के अनुसार और सेवा के अनुसार, जैसे आपकी शरण लिया है, सेवा किया है, उसके अनुसार आप फल देते हैं। आप में यह ऊंच है यह नीच है, पर है अवर है, ये परापरत्व नहीं है। किसी पर कृपा करना, किसी पर कृपा नहीं करना, इसके चलते आप में विषमता का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता है, आप सम है। प्रहलाद महाराज कल्प वृक्ष का उदाहरण दे करके भगवान का गुण गा रहे हैं। और अब आगे के श्लोक में कहते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ आपकी कृपा प्राप्त हुई और मुझमें संसार के भोगों से विरक्ति है, ये सब आपके भक्त की कृपा से हुआ। एतच्च त्वद्भृत्य कृपया मया प्राप्तमिति, त्वद्भृत्य पार्श्वम एव माम नय इति आशयेन आह। तो प्रहलाद महाराज जैसे पहले कहे थे कि मुझे अपने भक्तों के पास ले चलिए, मुझे सत्संग दीजिए। सत्संग का अर्थ होता है भक्त संग, सत का अर्थ है वैष्णव, भगवान का भक्त, और तस्य संग सत्संग उसका संग। सत्संग का केवल यह अर्थ नहीं होता है कुछ भी कोई साधु जैसा हो और उसके पास कोई आवे, सत्संग हो गया, इसको सत्संग नहीं कहते। भगवान का भक्त है, भगवान की बातें करेगा, भगवान में प्रेम देगा, भक्ति कराएगा, तो ऐसे वैष्णव को सत कहा गया है। और उसका जो संग किया जाता है, उसकी सेवा, उसके साथ में श्रवण कीर्तन आदि करना, भक्ति करना, इसको सत्संग कहते हैं। केवल साधु के साथ होना ही सत्संग नहीं है। तो कभी कभी किसी साधु का संग मच्छर भी करते हैं, है ना, बल्कि वो तो और शरीर के नीचे से खून निकाल लेते हैं, तो और प्रकृष्ट संग माना जाएगा। या खटमल खाट में होते हैं तो वो भी संग करने लगते हैं, इसको संग नहीं कहते हैं। सम ग सम्यक गमन अर्थात श्रद्धा से भगवान की भक्ति जब करते हैं साधुओं के संग में, उनको बहुत बड़ा मान करके अनुकूल भाव से सेवा करते हैं, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन करते हैं आपस में, तो इसको सत्संग कहा गया। शास्त्र इस बात को कहता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हे नृसिंहदेव, सब आपके भक्त की कृपा से, आपके भृत्य की कृपा से। कौन भृत्य? श्री नारद। श्री नारद मुनि की कृपा से हमें सब कुछ मिला है। तो समस्त मंगल का, कल्याण का मूल है आपके भक्त की सेवा, आपके भक्त का संग। अतः मैं आपके भक्त की सेवा कैसे छोड़ सकता, सोहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवा। भगवान की कृपा भी भक्त कृपा की अपेक्षा रखती है। जिस पर किसी वैष्णव की कृपा हो जाती है तो भगवान की कृपा अपने आप उसको फॉलो करती है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादात नकदी कुतो भी। गुरु के, वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान की प्रसन्नता मिलती है, और यदि भगवान प्रसन्न नहीं है तो न गति कुतोपी, कहीं सदगति नहीं होगी। इसी सिद्धांत को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं कैसे भक्त की सेवा छोड़ूंगा, अर्थात मुझे भक्त की सेवा का संग का हमें अवसर हमेशा दीजिए, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं जन्म मरण के कुएं में प्रभाव अहि कुपे, प्रभाव का अर्थ है संसार, संसार रूपी कुप जिसमें अहि कुप, अहि माने सांप होता है, सांप जिस कुएं में है, ऐसे कुएं में मैं गिरने वाला था। एवं जन्म निपतितम प्रभवा हि कुपे, कामा भी काम मनुय प्रपतन प्रसंगात, कृत्वात्म सात सुरर्षिणा भगवन गृहीत सोहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवाम। मैं कैसा था प्रभवा ही कूपे, प्रभव भव का अर्थ है संसार, जन्म मरण दुख सुख ये सब, और प्रभव प्रकृष्ट भव, इस विषम दुख से भरे हुए उस भरा हुआ संसार ही एक अजगर की तरह है, सर्प की तरह है, और ऐसे सर्प से युक्त कूप कुएं में गिरे हुए लोग कामम कामा भी कामम अनु, कामनाओं की कामना करते हैं, भोगों की कामना करते हैं, ऐसे इसको समझना चाहिए। मान लीजिए कोई कुआं है, बहुत गहरा है और उपेक्षित है, उसमें से कोई पानी नहीं निकालता है, कुछ नहीं, उसमें नीचे सड़ा हुआ पानी है विष जैसा, जैसे पानी कभी निकाला नहीं जाता, और उसमें मच्छर भरे पड़े हैं, बिच्छू हैं, और बहुत बड़ा अजगर सांप है उसमें, पर ऐसे कुएं में निपतितम जन्म गिरा हुआ मनुष्य या जीव भोगों की लालसा करता है। ऐसे कुएं में गिरा हो कोई, उसको तो महाविषैला सर्प डसेगा, गिर गया है, डस दिया गया है, फिर भी भोगों की लालसा करता है, जन्म मृत्यु में फंसा हुआ जीव फिर भी भोगों की कामना करता है, कई प्रकार का सुख भोगना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को देख करके प्रसंगत उसके संग से, अब मैं प्रपतन गिरने वाला था, उस कुएं में गिरने वाला था, तब तक तो दया करके देवर्षि नारद ने हमारा हाथ पकड़ लिया और गिरने नहीं दिया। तो इस प्रकार से भक्त की कृपा से मैं बचा हूं, और इसके बाद आपकी कृपा हुई, भक्त ने कृपा किया, देवर्षि नारद ने कृपा किया, तो आपका प्रसाद मिला, आप हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रखें। इस सब विचार करके मैं यही जीवन में सार ग्रहण किया हूं कि भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा साधन है। तो मैं किसी भी दशा में आपके भक्त की सेवा नहीं छोड़ सकता, यही बात कह रहे हैं। जन्म मरण रूप संसार ही अही है, और ऐसे अही से सर्प से युक्त कुएं में गिरा हुआ मनुष्य, प्रत्येक जीव कुआं में गिरा हुआ है। शायद आप लोग ऐसे कुएं को नहीं देखे हैं जिसमें भीतर सांप कई रहते हैं, हम लोगों को ऐसा देखने को मिला है, कई कुआं देखे सांप नीचे रहते हैं। एक भागवत में दृष्टांत दिया गया है कि एक बार एक व्यक्ति को हाथी खदेड़ा, उसको पकड़ करके चीरने के लिए, तो हाथी के डर से वो व्यक्ति कुआं में कूदा, कुआं में गिरना चाहा हाथी के भय से, लेकिन बरगद का वृक्ष था, उसकी बरोहें जड़ें नीचे लटक रही थी और कुछ शाखा भी, तो कुआं में गया लेकिन उसको पकड़ करके झूल गया, लटक गया। अगर नीचे गिरता है तो अजगर सांप है जो उसको निकल जाएगा, और ऊपर जाता है तो हाथी पकड़ करके चीर देगा। तो जिस शाखा को पकड़ा है उसको दो चूहे काट रहे हैं, एक काला है और एक गोरा चूहा। इसका रूपक श्रीमद् भागवत में बैठाया गया है कि ये जो काल है वो हाथी है, या मृत्यु है, तो उसके भय से व्यक्ति किसी वृक्ष की शाखा को पकड़ कर लटका है। शाखा का अर्थ है अभी कर्म फल बाकी है, कुछ बरस कुछ महीना जीना लिखा हुआ है, यही है बल्ली या शाखा, उसको पकड़ लिया है। पर उसको भी चूहा काट रहे हैं, 12 घंटा काला चूहा काटता है और 12 घंटा फिर गोरा चूहा काट रहे। रात खत्म हुई तो 12 घंटा बीता और दिन 12 घंटा बीता। और जीवन क्या है, कई दिन को जोड़ करके वर्ष बनता है, जैसे सप्ताह महीना पक्ष ऐसे बनते जाते हैं, पक्ष महीना फिर 6 महीना फिर साल भर, और कुछ साल को मिला करके जीवन की अवधि है, और प्रतिदिन उसमें से खर्च होता जा रहा है ना, प्रतिदिन खर्च होता है। मनुष्य सवेरे सवेरे कैलेंडर बदलता है, ये इतना बोका है कि ये नहीं सोचता है कि मेरा गया जीवन साल, अपने साथ ये घटना घट रही, प्रतिदिन जीवन की अवधि जा रही। तो कटते कटते क्या होगा, वो शाखा कट जाएगी, इसके बाद गिरेगा, गिरेगा तो काल सर्प अजगर ग्रास लेगा, और गिरना है ही, कितना दिन लटका रहेगा। मरने से पहले हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, तो शाखा से कुछ गिरा अभी भी लटका है, तो इसमें कामन अभी काम है, फिर भी भोग भोगता रहता है वो शाखा पकड़ करके लटका है, तो देखा कि ऊपर मधु कोष लगाई है मधुमक्खियां, तो उसमें से कभी कभी एक आध घंटा पर एक बूंद चू जाता है टप से, तो उसको चाटता है, ओहो कितना सुख है, कितना आनंद है। एक दो घंटे के बाद एक थोड़ा सा बिंदु गिरता है मधु का, तो उसी को चाट करके पीने का तो सवाल ही नहीं, पी नहीं सकता, केवल चाटता है, तो उससे वो सुखी अपने को मानता है। दिन रात परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा घर में सुख मिल गया, स्त्री से बातचीत हो गई, संग मिला, तो आदमी समझता है बस दुख है ही कहाँ, केवल सुख ही। लेकिन जीवन का समय इस तरह जा रहा है, आगे जाएंगे तो ऊपर समय काल मुंह बाय खड़ा है हाथी, हो सकता है किसी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए, ऊपर जाएंगे तो हाथी तो मारेगा ही, और ये बाहें कब तक पकड़ी रहेंगी शाखा को, नीचे गिरेगा तो सांप डसेगा, अगर नहीं भी डसता है ऊपर नहीं भी जाता है तो बीच में संतुष्ट होता है कि ये मधु मिल रहा है, वो भी थोड़ा, बहुत परिश्रम करके व्यक्ति को भोग बहुत कम मिलता है। तो इस तरह से सारा जन समुदाय गिरा हुआ है कुएं में, और मैं देखा देखी उनके संग से गिरने वाला था इस कुएं में, लेकिन देवर्षि नारद ने हमको बचा लिया। अतः मैं सोहम कथम विसर्जे तव भृत सेवा, फिर मैं कैसे आपके सेवक की सेवा छोड़ सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद इसको क्यों अनुग्रह मानते हो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा किया और तुम्हारे पिता का वध किया, ये अनुग्रह है ना। तो कहे नहीं नहीं यह अनुग्रह नहीं, आपने हमको संसार कूप से बचा लिया ये अनुग्रह है, प्राण की रक्षा यह अनुग्रह नहीं है। मत प्राण रक्षणम अनंत पितुर बधश्च, हे अनंत हे अविनाशी प्रभो, आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया, प्राण बचाया, और मेरे पिता का वध किया। यह अनुग्रह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं, यह अनुग्रह नहीं है। आपने मेरी रक्षा किया और मेरे पिता का वध किया तो अपने भृत्य सनकादि के वचन को पूरा करने के लिए, या नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए, या ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए नहीं, ये मैं कृपा नहीं मानता हूं। अरे प्राण बच जाए तो प्राण तो करोड़ों लोगों का बचा हुआ है, ये कोई कृपा थोड़े है ना। ये कोई भगवान की बहुत कृपा नहीं है कि प्राण बचा हुआ है। यह हमारा प्रतिद्वंदी मार दिया गया, शत्रु मार दिया गया, यह भी कोई कृपा नहीं है। जब हाथ में खड़ग लेकर, तलवार लेकर के, और मेरा पिता बहुत सी असत बातें बोल रहा था, गाली दे रहा था आपको, और ये कहा कि मैं तुम्हारा कम सिर हरामी, तुम्हारा सिर अब काट रहा हूं, और मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है जिसका तुम भजन करते हो तो आज तुमको बचा ले। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए अनेक उपाय किया। पहले जैसे हाथी से कुचलवाना, पहाड़ से गिराना, विषैली गुफाओं में बंद कर देना, घर में बंद कर देना, बर्फ में फेंक देना, दवानल में फेंक देना, सांपों से डसवाना, अनेक अस्त्र शस्त्रों से मरवाया, लेकिन प्रहलाद पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होता था। अंत में उसने यही निर्णय किया कि अब अपने हाथ से मारूंगा। पहले ये सोचता था कि दुनिया में बदनामी होगी कि अपने ही बेटा को बाप होकर के मार दिया, इसलिए अपने हाथ से नहीं मारना चाहता था। लेकिन जब देखा कि ये मर ही नहीं रहा है किसी भी उपाय से, तो स्वयं ही तलवार लिया, उस तलवार को तीखा किया, और हाथ में तलवार लेकर के खड्गम प्रगृह्य और बोला, अरे नालायक, तुम बेटा होकर के मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हारे हित के लिए तुमको भेजा स्कूल में, असुर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा कि राजनीति पढ़ लोगे तो मेरे बाद तुम राजा बनोगे, लेकिन हाय हाय तुम्हारा भाग्य कितना खराब है, राजा का बेटा होकर के भी तुम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, या समाज शास्त्र नहीं पढ़ रहे, सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे, अब तुम्हारे कर्म में यही लिखा है बाप के हाथ से मरना, हम क्या करेंगे, तुम बताओ तुम इतने निर्भय क्यों हो, किसके बल से तुम इतना निर्भय हो। तुम जानते हो जब मैं क्रोध करता हूं तो सारे लोकपाल कांपने लगते हैं, अपना अपना घर छोड़ करके भाग जाते हैं, और तुम 5.5 वर्ष के बच्चे हो और मुझसे तुमको डर नहीं लगता है, हमसे तुम डरते नहीं हो। अरे मैं पूरा क्रोध में हूं फिर भी तुम नहीं डरते हो। वो तंग आ गया हिरण्यकश्यपु, कहां से तुम्हें बल आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, महाराज हे राजन, जिनके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं, और सारे लोकपाल जिनकी कृपा से लोगों का पालन करते हैं, और आप भी जिनकी कृपा से ही, उन्हीं की कृपा से आप दुनिया को जीते हैं, सबको बस में किए हैं, तो जहां से आपके आप में बल की सप्लाई हो रही है वहीं से मुझ में भी बल आ रहा है, वो दूसरी जगह से नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप में भी इतना जो बल आ रहा है वहीं से आया है, पावर हाउस वही है, तो हम में भी एक कनेक्शन है, आप में भी है, वहीं से आ रहा है। तो इस पर लगा गाली देने, अरे दुष्ट, मेरा शत्रु मुझ में बल की सप्लाई करेगा, हमारा शत्रु विष्णु है और तुम ये कह रहे हो कि वो हमको बल देता है, तुम में भले बल देता होगा हमें क्यों देगा, तुम्हारा इतना दुर्भाग्य है, सब लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, मुझे इस जगत का मालिक कहते हैं, केवल तुमको छोड़ करके और तुम कहते हो कि मेरे अलावा कोई ईश्वर है, हिरण्यकश्यपु के अलावा कोई ईश्वर है, तो बस हद हो गया, सीमा हो गई। जब उसने कहा कि हमारा शत्रु हमको कैसे बल देगा, तो इस पर प्रहलाद महाराज ने कहा, कड़े स्वर में कहा, इस असुर विचार को छोड़ो, ये राक्षसी आसुरी विचार है। वास्तव में बल भगवान से आता है, विष्णु से आता है, और भगवान विष्णु सबके सुहृद हैं, वो किसी के शत्रु नहीं है। तुम भगवान को अपना शत्रु समझते हो, छी छी, इस तरह से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। शत्रु हैं, लेकिन शत्रु कौन है? शत्रु हैं अपनी इंद्रियां, जिनको बस में नहीं किया गया है, अपना न जीता हुआ, न बस में किया हुआ मन शत्रु है। भगवान किसी के शत्रु नहीं है, तुम ऐसी बात मत बोलो। इस पर हिरण्यकश्यपु तलवार उठा लिया और कहा कि बस बस, मरने का समय तुम्हारा आ गया। जब कोई मुमूर्षु होता है ना, मरने का समय आता है तो ऐसे ही उठपटांग बातें बका करता है, जैसे तुम बक रहे हो। तुमको कोई शर्म है कि बाप के आगे इतना प्रवचन झाड़ रहे हो? अब तुमको जीने का अधिकार मैं समझ गया नहीं रहा, अब हमारे हाथ से तुमको मरना ही पड़ेगा। और अभी मैं चांस देता हूं, जिस ईश्वर के बल से तुम इतना निर्भय हो, वो मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर है? और अगर है तो आज मैं तुम्हारी गर्दन काटने जा रहा हूं, वा करके अवतु तुम्हारी रक्षा करे। चैलेंज किया और एक दो तीन बोल करके वो गर्दन काटना चाहा। प्रहलाद महाराज से पहले कहा, तुम जिसको ईश्वर मानते हो, वो विष्णु कहां है, कहां रहता है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, वो सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है, वो हम में है, आप में है, और जिस खंभे में बांधा था तो उस पर कहा, इधर क्यों देख रहे हो खंभा में, इसमें भी है क्या? और प्रहलाद महाराज तो हाथ जोड़ रहे थे खंभा में भगवान को देखकर, तो उसको विश्वास हो गया कि हो न हो जरूर खंभा में विष्णु है, तभी ये इतने भक्ति भावना से प्रणाम कर रहा है। क्या वो सब जगह है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ दृश्यते, हमको तो दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यपु कहता है, न दृश्यते, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और तुमको दिखाई दे या न दे वो है। तो उसको विश्वास हो गया कि इस संगमरमर के खंभे में, मार्बल के खंभे में जरूर है, दिख रहा है। तो अपने मुष्टिका से मारा खंभे पर, जैसे कि विष्णु अगर होगा तो उसी में पिस जाएगा, मर जाएगा। इतना जोर से मारा खंभा में तो बहुत भयंकर आवाज होने लगी, खंभा भी फटा नहीं, आवाज होने लगी, जैसे लगा कि कोई विशेष है साउंड सिस्टम का बटन दबा दिया, ऑन कर दिया, भयंकर आवाज होने लगी। हिरण्यकश्यपु चकित हो गया कि कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, लेकिन ये समझने लगा कि इसी खंभे से ही आवाज आ रही है। अभी वो विचार कर ही रहा था तैनात हो गया तलवार और ढाल लेकर के, तब तक भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए। खंभा को फाड़ करके नृसिंह भगवान अद्भुत रूप, अद्भुत वेश, अद्भुत प्रताप भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जो हमारे पिता का वध किए, हमारी रक्षा किए, तो अपने भक्त सनकादिक की बात को सत्य करने के लिए रितम करते, या ब्रह्मा जी जो आपके भक्त हैं उन्होंने वर दिया था हिरण्यकश्यपु को, तो उनके वर को पूरा करने के लिए आपने हिरण्यकश्यपु का वध किया, ये हम पर कोई अनुग्रह नहीं है। हम पर अनुग्रह यह है कि आपने मुझे श्री नारद जी का संग दिया और संसार के भोगों से विरक्ति रही, आपके चरणों में आकर्षण रहा, भक्ति रही, यही सबसे बड़ी कृपा है। इस संसार में अनेक कारणों से अनेक लोग अपने को लक्की मानते हैं, अपने को फॉर्चुनेट मानते हैं, किस किस कारण से? यदि धन प्राप्त है, या विद्या पढ़ाई लिखाई प्राप्त है, कंपटीशन में यदि आ गए, या बहुत सुंदर शरीर है, घर द्वार बहुत अच्छा है, स्वजन बहुत अच्छे हैं, तो व्यक्ति मानता है कि मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं, भाग्यशाली वो है जिसे भक्तों का संग मिलता है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान दुख कुछ नहीं है, ये खाने को भी न मिले, पहनने को न मिले, घर न रहे, तो ये भारी दुख है वास्तव में। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो ये माना जाएगा ना भाई दरिद्र नहीं है, धन है तब सुख हुआ, तो कहते नहीं, दुख है दरिद्रता, लेकिन सुख सबसे बड़ा क्या है, भगवान के भक्त का मिलन, उसे भेंट होना, ये सौभाग्य। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपका अनुग्रह यह है कि आपने मुझे भक्त संग दिया और हमें भोगों से बचा लिया। इसके बाद भगवान की महिमा के 8 श्लोक बोले हैं, उसको मैं यहां नहीं ले रहा हूं, व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा। कुछ खास प्रार्थना है, विनय है भगवान से, प्रहलाद महाराज उसको व्यक्त कर रहे हैं। एक श्लोक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संकेत कर रहे हैं और 30वां श्लोक है, इत्थम लृतिर्यग ऋषि देव झसावतारही लोकान विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासि जुगान वृत्तम छन्न कलौ जद भव त्रिजुगोथ सत्वम। 8 श्लोकों में भगवान की महिमा का निरूपण करके अब यह कह रहे हैं कि हे प्रभो, जो आप किसी का पक्षपात करते हैं यहां और उसके विरोधी का वध करते हैं, यह केवल प्रकृति के सत्वगुण को स्वीकार करने के कारण, नहीं तो आप में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है और किसी के प्रति उपेक्षा नहीं है। आप मनुष्यों में अवतार लेते हैं, पशुओं में अवतार लेते हैं, पक्षियों में अवतार लेते हैं, और ऋषियों में, देवों में, और जलचरों में। ली त्रियग ऋषि देव झख झख या झस कहते हैं जलचर को, भगवान ने मनुष्यों में अवतार लिया है। कई बार अवतार लेते रहते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नृषु मनुष्यों में, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मनुष्यों में अवतार है, मानव जाति में भगवान आकर अपने को प्रकट किए। और ऋषि सु त्रियग पशुओं में अवतार लिए, पक्षियों में, पशुओं में 12 देव के रूप में भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया। तिरियक कहते हैं जो ऐसे तिरछा खड़ा होता है, उसको तिरियक कहते हैं। पशु ऐसे खड़े होते हैं जो पक्षी, इसलिए वो तिरियक कहते हैं। और ऋषि, ऋषियों में अपने अवतार लिया, नर नारायण के रूप में ऋषियों के में अपने अवतार लिया, और श्री नारद जी भी आपके अवतार हैं इत्यादि। और देवों में, देवताओं में भगवान ने अवतार लिया, भगवान वामन देव के रूप में कश्यप जी के यहाँ माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए। देवताओं में बहुत से अवतार हैं, मनुष्यों में अवतार हैं, और झक है जलचरों में, मत्स्य अवतार लिया आपने। अरे बहुत से अवतार लेकर के आप लोकान विभाव यसी लोगों का पालन करते हैं और हंसी जगत प्रतिपान और जगत के जीवों के जो शत्रु हैं उनको दुख देने वाले हैं उनको मारते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका पालन करते हैं और जो दुष्कृति हैं उनका वध करते हैं। कई अवतार भगवान ने लिया है तो अच्छे लोगों की रक्षा की है, जैसे भगवान श्री राम, जितने भी सज्जन थे, ऋषि मुनि थे, उनके आश्रमों पर जा जा करके भगवान ने सुख दिया। रामचरितमानस में एक प्रसंग है और वाल्मीकि रामायण में भी है कि भगवान जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए तो अत्रि ऋषि ने उनको दिखाया मनुष्यों की हड्डियां जमा की गई थी, वो राक्षस जा करके जंगल में मुनियों को खा जाते थे, उनका चाम उनका मांस सब और हड्डी को चिचोर करके फेंक देते थे, डायरेक्ट हाथ दांत से ही खाते थे, राक्षस उन्हीं को कहते हैं। तो साधुओं को जंगल में से पकड़ पकड़ करके और पूरा खा करके और हड्डी जमा किए थे, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति भजन न करे राम का, हड्डी देखेगा तो कांप जाएगा, कह रहे बाप रे बाप। ये सब जमा किए थे, पहाड़ जैसा हड्डी जमा किए थे। भगवान ने जब देखा करुणा से उनके नेत्रों में आंसू आ गया कि सज्जनों की, साधु संत की यह दुर्दशा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया धनुष को ऊपर करके, यदि मेरा नाम राम होगा तो मैं इस पृथ्वी को राक्षसहीन कर दूंगा, प्रतिज्ञा किया और बहुत से राक्षसों का वध किया। और इसके बाद राक्षस शिरोमणि रावण का वध किया और भगवान ने राक्षसों का वध करके फिर सुंदर राज्य की स्थापना किया, जिस राज्य का वर्णन पढ़ करके आज भी लोग अभिलाषा करते हैं कि राम राज्य हो जाए। तो भगवान ने बहुत लोगों की रक्षा किया और दुष्टों का दमन किया। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के जब थे प्रकट लीला में, उसी दिन से राक्षसों को मारना चालू किए, 6 दिन के, मां जशोदा की गोद में तो पूतना का वध किए और फिर शकटासुर का वध किए, तृणावर्त का वध किए, फिर बकासुर का वध किए, वर्षासुर का वध किए, अघासुर का वध किए, धेनुकासुर का वध किए, कालीय का मर्दन किए और भी बहुत से अरिष्टासुर, प्रलंबासुर इत्यादि का वध किए। ये सारा वध का काम उन्होंने किया केवल 10 वर्ष के अंदर। जब 10 वर्ष के थे तो ब्रज में इतने असुरों का वध किए, हाथ में कोई हथियार नहीं लिए, तो भगवान है, किसी को तमाचा मार दिए, किसी के मुंह में हाथ डाल दिए जैसे केसी, किसी को पैर से मार दिए, किसी का पैर पट घुमा करके फेंक दिया आकाश में ही मर गया, सांप के फण पर, जिसके 100 प्रधान फण थे और 1001 फण थे, उस पर नृत्य कर करके उसको बेदम कर दिए और वृंदावन से निकालकर बाहर किए जमुना से। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। जब मथुरा में पहुंचे 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलय पीड का वध किए, बहुत से सैनिकों का वध किए जो कंस के सेना में थे, इसके बाद कंस के भाइयों को मारे, कंस का वध किए। कंस का वध करने के कारण जरासंध 23 औक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि कंस जरासंध का दामाद था, तो दामाद की हत्या कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो वो क्या कहता था जरासंध, ऐसा नालायक भांजा जो अपने मामा तक का वध कर दिया, पर दुष्ट ये नहीं देख रहा था कि मामा कैसा था जो अपने भांजों को मारा जन्म लेते हैं। दुष्ट लोग अपना दोष नहीं देखते। 18 साल भगवान मथुरा में रहे और हर एक साल वो सेना इकट्ठी करके लाता था और सब मारे जाते थे। इस तरह भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया। 18 वर्ष तक एक एक वर्ष में 23-23 औक्षौहिणी सेना का वध। इसके बाद द्वारका गए तो द्वारका में भी रक्षा और बध मारना दुष्टों को दोनों पैरेलल में चल रहा था। सज्जनों की रक्षा किए, भक्तों की रक्षा किए और अनेक दुष्ट राजाओं का वध कराए। और अंतिम वध था जिसमें भगवान ने किसी को नहीं मारा, लेकिन अर्जुन में और भीमसेन में शक्ति दे करके कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी दुष्टों का वध करा दिया। पृथ्वी बिल्कुल सुखी हो गई। दुष्टों को मारना बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वे कहते नहीं किसी को मारने की क्या जरूरत है, तब उनको छोड़ दो वही मारा करें, पर किसी को मारते नहीं है। तो तुम बैठे हो पार्लियामेंट में, तुमको ही मारने वाले लोग और मारे नहीं जाते, जो छोड़ दो तुम मारा करें, दुनिया को मारें तबाह करें और तुम दया का भाव दिखाओ। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम लड़ो, इस प्रकार का युद्ध सौभाग्यशाली क्षत्रिय पाते हैं, सबको ये मौका नहीं मिलता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मित्रसम, ऐसा युद्ध सुखी क्षत्रिय पाते हैं, युद्ध करने में ही तुम्हारा हित। तो भगवान के लिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि आप लोकान विभाव ऐसी सामान्य लोगों का, सज्जनों का आप पालन करते हैं और जगत प्रतिपान और जीवों के जो द्रोही हैं उनको हंसी नष्ट करते हैं। भगवान भगवान है, अनंत बल है उनमें। ऐसा नहीं कि भगवान अवतार लिए यहां धर्म प्रचार के लिए, दुष्टों को मारने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और उनको ही कोई फांसी पर चढ़ा दे, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान में अनंत बल होता है। जो भी श्री कृष्ण के सामने आया वो मारा गया विरुद्ध भाव से, शत्रु के रूप में आया। ऐसा नहीं कि भगवान को ही कोई मार दे, और भगवान धर्म का प्रचार क्या करेगा। तो वास्तव में भगवान है श्री कृष्ण। वैसे अपनी अपनी मर्जी है, जिसको भी भगवान टाइटल दे दे दूसरी बात है, अपनी बुद्धि की उपज है, लेकिन भगवान है श्री कृष्ण, ये सर्वत्र विदित बात। तो भगवान ने शत्रुओं का वध किया और सज्जनों की रक्षा किया। धर्मम महापुरुष पासी और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, भगवान ने धर्म की स्थापना किया, चार वर्ण चार आश्रम के नियमों को स्थापित किया और भक्ति भी सिखाया, सभी सुखी थे। दो ही राज्य तो हुआ वास्तव में, युधिष्ठिर महाराज का राज्य और भगवान श्री राम का राज्य। तो युधिष्ठिर का राज्य वास्तव में कृष्ण राज्य था, वे कृष्ण के अधीन रह करके भगवान की आज्ञा से ही, कृष्ण की आज्ञा से शासन करते थे। तो कई बार भगवान अवतार लेते हैं और प्रायः सभी योनियों में, और युगानुवृत्त युग धर्म का की रक्षा करते हैं। जिस युग में जो धर्म है भगवान को प्राप्त करने का, दुख मिटाने का, उस धर्म का आचरण करते हैं। छन्नह कलव, लेकिन हे प्रभु आप तीन युगों में लीलावतार करते हैं, सत्य युग, त्रेता और द्वापर, आप लीलावतार करते हैं प्रकट अपने स्वरूप में, लेकिन कलयुग में आप छन्न रहते हैं, छिपे रहते हैं, फिर भी पहचानने वाले लोग पहचान जाते हैं, छन्न रहते हैं। क्या क्या छन्न रहते हैं? छन्न का अर्थ है आवृत, आच्छन्न। भगवान का रंग है सांवला, लेकिन कलयुग में वे सांवला रंग छिपा लेते हैं, बिल्कुल स्वर्ण के समान पीत वर्ण का बन करके आते हैं। और क्या छिपाते हैं? हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिए रहते हैं, यहां तक कि बांसुरी भी छिपा करके आए, छन्न। और शरीर का रंग भी छिपा लिए और भाव भी, कभी ये नहीं कहे कि मैं भगवान हूं, अपने को कहते थे मैं कृष्ण का दास हूं, मैं विष्णु का दास हूँ, भाव भी छिपा करके आए और अस्त्र शस्त्र भी नहीं लिए, शरीर का रंग भी छिपा लिए। ये छन्न अवतार कौन है इस युग में? वे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसको जिसकी सूचना प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। छन्न कलव, आप कलयुग में छन्न रहते हैं, इसीलिए आपको त्रिजुग कहा गया है। त्रिजुग जो तीन युगों में लीला अवतार ग्रहण करते हैं, कलयुग में भी करते हैं लेकिन कलयुग में छन्न रहते हैं। छन्न कलव, विचार करके बड़े बड़े मनुष्यों ने लिखा है और सदग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में तो है ही प्रमाण कि ये छन्न अवतार इस युग के, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। सबने माना है, उनको देख करके उस समय के जो भी बड़े बड़े विद्वान थे वे तुरंत समझ गए। जैसे श्रीपाद अद्वैताचार्य, वो भगवान को पहचान गए चैतन्य महाप्रभु के कि साक्षात ईश्वर है, कृष्ण है, और दास भाव से उनकी शरण में रहते थे, जबकि ये स्वयं ही भगवान विष्णु के अवतार थे अद्वैताचार्य। भगवान शिव भी उनमें थे, शिव और भगवान विष्णु के मिलित अवतार थे अद्वैताचार्य। लेकिन ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते थे दास भाव से, जिनका चरण सारा नवदीप पूजता था, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ब्राह्मण, पर ये भगवान चैतन्य महाप्रभु को का भजन करते थे, उनकी सेवा करते थे, अपने को दास कहते थे निमाई का। नित्यानंद प्रभु जो श्री बलराम जी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को पहचान गए। रूप गोस्वामी पाद प्रथम भेंट में ही पहचान गए कि साक्षात कृष्ण है, जो प्रणाम करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु उनको मना किए। तो प्रणाम कैसे किए? पहले मिलन में नमो महाबदान्याय, हे महादानी आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं एक कंगाल सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और आप हमको महाबदान्य कह रहे हैं। मैं कैसे महाबदान्य? महाबदान्य तो कृष्ण है, भगवान है, वे सर्वेश्वरेश्वर हैं, सबको सब कुछ दे सकते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और हमको महाबदान्य कह रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं क्या आप में महाबदान्यता है वो बता रहा हूं। नमो महाबदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम ही सबसे बड़ा धन है, पंचम पुरुषार्थ है, उस महाधन को आप देते हैं इसलिए आप महाबदान्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, हम तो उनके दास हैं, हम कैसे देंगे? तो कृष्णाय, आप ही कृष्ण हैं, नाम हो गया है आपका कृष्ण चैतन्य, नाम ने आप वास्तव में कृष्ण हैं लेकिन इस समय नाम धारण किए हैं कृष्ण चैतन्य। तो कृष्ण तो सांवले हैं, उनका रंग सांवला है। तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं गौरत्व से नमा, आप कृष्ण हैं लेकिन शरीर की कांति गौर वर्ण की स्वीकार करके आए हैं। राधा रानी का वर्ण और भाव दोनों भगवान कृष्ण ग्रहण करके आए, राधा रानी का भाव और राधा रानी के शरीर की कांति ये भगवान कृष्ण स्वीकार करके आए। तो रूप गोस्वामी पाद पहचान गए गौरत्व से नमा, आप साक्षात कृष्ण हैं, आप कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं, आप सबसे बड़े दानी हैं, हे प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। पर अपने भक्त के सामने भगवान चैतन्य महाप्रभु कोई नाटक नहीं कर सकते थे कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं भगवान, ये नहीं हूं वो नहीं। एक चैतन्य चरितामृत में कथा है कि सनातन गोस्वामी से भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत अवतार की बात कह रहे हैं, तो कहते कहते वे जुगावतार की बात करें, सतयुग त्रेता द्वापर और कली में कैसे अवतार होता है। तो चैतन्य महाप्रभु तो राजमंत्री थे, परम विद्वान थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि कलयुग में छन्न अवतार होता है कृष्ण का। तो रूप गोस्वामी पाद रोके, सनातन गोस्वामी रोके, कहे कि प्रभु और तो सब समझ गया सतयुग में कौन अवतार था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कौन अवतार हुआ, जरा इसको खोल करके कहिए, इसको कहिए, ठीक से बताइए, जरा साफ साफ बताइए। तो प्रभु कहे सनातन क्षण चतुराली, ये चतुरता छोड़िए, अब छोड़िए जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, अब इसको क्या सुनने की जरूरत, ये कह करके टाल दिए। पर सनातन गोस्वामी ऐन मौके पर पकड़ लिए, वो जुगावतार कलयुग तो आप ही हैं, उनके मुख से कहलवाना चाहते थे कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं छोड़िए, आप ज्यादा क्या व्याख्या करनी है, आगे सुनिए। चैतन्य चरितामृत में बात आई, ये छन्न अवतार भगवान श्री कृष्ण के, भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण है, कोई उनके अंश नहीं है या कला नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है। अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए, हरिनाम का प्रचार करने के लिए, प्रेम देने के लिए, भेष बदल करके, भाषा बदल करके, स्वरूप बदल करके आए हैं और अपने को कृष्ण का दास कहते हैं, हाथ उठा करके हरि बोल हरे कृष्ण कहते हैं। इस कारण से इस संसार में किसी किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि ये तो कृष्ण के दास है, कृष्ण नहीं है, ये नहीं, ये साक्षात कृष्ण है। पहचानने वाले लोग पहचान जाते हैं, प्रहलाद महाराज पहचान रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं छन्न कलौ, कलयुग में आप छन्न रहते हैं। अपने भक्तों के सामने भगवान अपने को छिपा नहीं सकते, बल्कि उनको प्रकट करना पड़ता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने वे षडभुज मूर्ति से प्रकट हुए, दो भुजा भगवान श्री राम की, दो श्री कृष्ण की और दो भगवान चैतन्य महाप्रभु की, षडभुज दर्शन दिए। राय रामानंद जी को राधा कृष्ण के साथ दर्शन दिए, राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण, और उनसे वे आग्रह करते थे कि नहीं हमें तो दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, तो भगवान उनको दिखाते थे। नवदीप में अष्ट प्रहरिया भाव है, आठ पहर तक भगवान चैतन्य महाप्रभु में भगवत आवेश हुआ, तो किसी को नृसिंह देव के रूप में दर्शन दिए, किसी को भगवान विष्णु के रूप में, किसी को किसी अवतार के रूप में, किसी को किसी अवतार के रूप में। यहाँ तक जब नृसिंह देव के रूप में उनका आवेश हुआ तो सब भक्त भागने लगे। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है विस्तार से, यहाँ तक कि वे लक्ष्मी जी के आवेश में भी हो गए। उस समय कुछ भक्त भगवान का अस्तन पीने लगे बच्चा के रूप में, कि हमारी माँ है, ये है, ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है, चैतन्य भागवत में दी गई है सब। पर फिर भी उस समय भी अधिक लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझे, जब स्वयं वही चाहते हैं कि न समझे तो क्या किया जाए, खुद ही अपने को ढक करके आए, छिपा करके आए। पर भगवान श्री कृष्ण खुला भगवान है, यदि उनको कोई चैलेंज किया तो विराट रूप तुरंत दिखा देते, विश्व रूप। भगवान श्री राम मर्यादा के अवतार हैं, किसी किसी भक्त को अपना रूप दिखाए तो उसको कह दे, मना कर दे, किसी से कहना मत, लेकिन भगवान कृष्ण कभी नहीं कहे कहना मत। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि परफेक्ट मनुष्य देखना हो, यदि भगवान है श्री राम लेकिन परफेक्ट आचरण सब, तो भगवान राम में देखो, एकदम आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई, सब कुछ, और आदर्श भक्त देखना हो तो चैतन्य महाप्रभु, और ठीक ठीक भगवान को देखना है तो कृष्ण को देखो, क्लियर खुला भगवान है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपा करके आते हैं कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसीलिए उनको त्रिजुग कहते हैं, तीन युगों में जो लीला अवतार करते हैं। अथवा त्रिजुग का एक और भी अर्थ है कहीं कहीं, त्रिजुग तीन जिसमें जोड़ा है, तीन दुनी छ, छ ऐश्वर्य जिनमें है उनको भी त्रिजुग कहते हैं, युग का अर्थ है जोड़ा, तीन चीज जिनमें जोड़ा है, तीन दुनी छ, छ ऐश्वर्य, त्रिजुग। यह बात कहकर के प्रहलाद महाराज भगवान के तत्व का, अवतार का, अवतार के रहस्य का, अवतार क्यों लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब कह करके अब कहते हैं। लेकिन प्रभो, आपके तत्व के बारे में मैं सुना हूं, लेकिन हमारी योग्यता नहीं है कि मैं उस पर ज्यादा विचार कर सकूं, मीमांसा कर सकूं, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है, दूषित है मन। कोई भी व्यक्ति भगवान के रूप पर विचार करेगा सुन करके या पढ़ करके, तो मन यदि साफ है, भगवान के तत्व को पकड़ने की शक्ति रखता है, तब पकड़ पाएगा ना। जैसे मान लीजिए किसी के पास टेलीविजन है, टीवी है, लेकिन वो बिगड़ा हुआ है या डिस्कनेक्टेड है, ब्रोकन है, किसी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो रूप होते हुए भी यहाँ फैला हुआ है रूप, जो ट्रांसमिटेड होता है किसी केंद्र से, तो रूप है, लेकिन टेलीविजन खराब है तो रूप दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर टेलीविजन ठीक है तो टेलीविजन के स्क्रीन पर वो रूप दिखाई देगा साफ, वो है ना, सब जगह है, प्राकृत है, फिर भी वो रूप सब जगह है। अगर करोड़ों टेलीविजन रखा जाए तो सब जगह वो दिखाई देगा रूप, वो यहां भी है, शब्द भी रेडियो का फैला हुआ है सब जगह, लेकिन रेडियो रहेगा तब ना, और ठीक रहेगा तब ना शब्द सुनाई पड़ेगा। भगवान का रूप है, दिव्य रूप है, दिव्य माधुर्य है, उनके वचन है, बहुत सुंदर बोलते हैं, उनके हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ, लेकिन हृदय का टेलीविजन दूषित है, फट गया है, दिखाई नहीं पड़ते। तो दिखाई क्या पड़ेगा, जब नहीं टेलीविजन में कुछ आएगा तो क्या होगा, निराकार, और उसके अलावा गति क्या है। जब दिखाई ही नहीं पड़ता है तो क्या कहेंगे कि ईश्वर निराकार है, निराकार है, निराकार, निराकार कहे को है, नराकार है, ईश्वर नराकार है, नराकार का तो नर का आकार है, मनुष्य का आकार है उनका, वे निराकार नहीं है। निराकार मनुष्य का केवल अज्ञान है और कुछ नहीं है, निराकार, निराकार कहां से पता लगाया कि निराकार है, देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो पता कैसे लगा कि निराकार है। और निराकार कोई सुनेगा तो फिर प्रेम क्या करेगा। कोई व्यक्ति यहां बैठा है और उसको पता लगे कि हमारी स्त्री आज से निराकार हो गई, तो प्रेम रहेगा, तो खोजेगा कि किसी तरह से साकार करो भाई, टेलीविजन में सूचना दो, ब्रॉडकास्ट करो, ये करो, निराकार से प्रेम हो ही नहीं सकता है। निराकारवादी लोग प्रेम करने की कला छीन चुके हैं, प्रेम नहीं कर सकते भगवान से। भगवान वास्तव में सबसे सुंदर शरीर वाले हैं, सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे धनी, सबसे गुणवान, रसिक, कृपालु, सब गुणों से भरे पड़े, पर भगवान के इस तत्व का साक्षात्कार मन में होगा, और मन यदि गंदा है, मन दूसरे विचारों में है, तो भगवान का रूप कैसे स्फुरित होगा हृदय में, मन में कैसे आएगा। इसी को प्रहलाद महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं, नैतन मनस्तव विकुंठ नाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। हे वैकुंठ नाथ, हे वैकुंठ के अधिपति, एतन मन, ये हमारा मन न संप्रियते, नैतन मनस्तो विकुंठ नाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। आपकी बात सुन करके, आपका चिंतन करके मेरा मन न संप्रियते, प्रसन्न नहीं होता है, आनंद का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि दुरित दुष्टम, अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के पाप करने से यह दुष्ट दूषित हो गया है। दुष्ट का अर्थ होता है दूषित, गंदा, और असाधु, असाधु का अर्थ है बहिर्मुख, आपके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उल्टे कामातुरम संसार के भोगों का चिंतन करता रहा, रुपए पैसे का, घर का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, इन्हीं सब का चिंतन में लगा रहा, तो इन सब चीजों में लगा हुआ मन कृष्ण को कैसे समझ पाएगा? मन शुद्ध चाहिए और खाली चाहिए, जिससे कि वो भगवान का रूप समझ जाए, भगवान के गुण, भगवान के उपदेश, भगवान के लीला चरित्र को समझे। तो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि यह दुरित दुष्ट है, अपने दुरित बुरे कर्मों के कारण अशुद्ध है, बहिर्मुख है और तीव्र है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। दुर्धरम तीव्रम का अर्थ है, कामातुरम विषय भोगों की लालसा से आतुर रहता है, हर्ष शोक भय शलार्थम, इसमें कभी कभी खुशी आती है, हर्ष आनंद नहीं, हर्ष दूसरा चीज है, शोक कभी शोक आता है इसमें, कभी भय आता है, इन तीन ऐसाओं से आर्त है, व्याकुल है। तस्मिन मनसी, ऐसे मन में मैं आपके तत्व का क्या विचार करूंगा, क्या चिंतन करूंगा? इसीलिए पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए कौन साबुन है, क्या उपाय है? भगवान का नाम सुनना और बोलना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला ये है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन रात भगवान के नाम को यदि रटा जाए तो मन शुद्ध हो जाता है, और जैसे टेलीविजन पर साफ रूप दिखाई पड़ता है, वचन सुनाई पड़ता है, इस तरह से भगवान समझ में आ जाएंगे। और यदि साफ हृदय नहीं है तो बस अब निराकार ही सेक्ट रह गया केवल, और कुछ नहीं सूझेगा। और भक्त लोग भगवान को समझते हैं, किसी बच्चे से भी पूछा जाता है कि भगवान का रंग क्या है, ब्लू रंग है। मैं कई बच्चों से पूछा है तो कहते हैं ब्लू, हाथ में क्या लिए रहते हैं, फ्लूट। उनके साथ कौन एनिमल रहता है, कुत्ता रहता है कि गाय, काऊ, ऐसे बोलते हैं। भक्तों के बच्चे हैं वे, उनमें संदेह नहीं है, वे समझ गए हैं कि भगवान कौन है। और पढ़े लिखे गधों से पूछा जाए कि भगवान क्या है, अरे वो है ही नहीं, अगर है भी तो निराकार, इस तरह का तर्क पेश करते न। हम भी विश्वास करते हैं वो है, लेकिन एक शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता। जब देखा ही नहीं जा सकता, तुम्हारे मानने में दम क्या है? ईश्वर ऐसा चीज है, ऐसी ऐसा व्यक्ति जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, तो तुम बोलते क्यों हो? छोड़ चुप रहो। जो उसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता, तो आज से सब लोग मौन हो जाएं। यदि कोई किसी से पूछे कि भारत का प्राइम मिनिस्टर क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो निराकार हो सकता है। कहाँ रहता है? सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। सीधा कह देने में क्या हर्ज है कि मुझे ज्ञान नहीं है भाई, हमको पता नहीं। नहीं मालूम हो तो अटकलबाजी करने से ठीक नहीं होता। जब भगवान के विषय में ज्ञान है ही नहीं, गुरुजनों से सुने ही नहीं, शास्त्र पढ़े ही नहीं, भागवत पढ़े नहीं, नाम जप किए नहीं, नहीं ज्ञान है तो स्वीकार करना चाहिए भाई हमको ज्ञान नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा मन अशुद्ध है, ऐसे अशुद्ध मन में और भोगों के लिए आतुर है, ऐसे मन में मैं आपके तत्व का क्या चिंतन कर सकता हूं, क्या विचार कर सकता हूं? कृष्ण को समझने के लिए पूर्ण शुद्ध मन चाहिए, जिसमें कोई कचड़ा भोगों की अभिलाषा न हो, जिसमें क्रोध न हो, काम न हो, भय न हो। और भगवान का वो जप करता हो व्यक्ति, भगवान को प्रणाम करता हो, भक्तों का संग करता हो, तो निश्चित ही कृष्ण को पूरा पूरा समझ जाएगा, कृष्ण को समझा जा सकता है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं सातवें अध्याय के इसमें बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि योगम युंजन मदाश्रय, उसके पहले क्या है, असंशयम समग्रम माम जथा ज्ञासिता छिड़ो मया सक्त मना मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम जथा ज्ञासिता छिड़ो। अर्जुन मुझको बिना संदेह के बिना डाउट के और समग्रम पूरा पूरा जैसे तुम जान जाओगे वो मैं बता रहा हूं, ऐसा मतलब कृष्ण को पूरा पूरा समझा जा सकता है और बिना संदेह के असंशयम समग्रम माम जथा ज्ञासी तत्ण। और उसके बाद उपदेश करते हैं तो भगवान को समझा जा सकता है, लेकिन मैया सक्त मना है पार्थ, मुझमें मन को आसक्त करके और मेरी भक्ति जो करते हुए जिस श्रवण से जिस उपाय से तुम मुझको पूरा जान जाओगे और बिना संशय के वो मैं बता रहा हूं। जबकि कृष्ण का ज्ञान बहुत कठिन है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जतति सिद्ध है जततम अपि सिद्धानाम कश्चित नाम व्यति तत्व, तो बहुत दुर्लभ है, समझ में आना कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जो उपाय बता रहा हूं इस उपाय से तुम उसको पूरा पूरा जान जाओगे। तो कृष्ण को समझने के लिए बहुत निर्मल हृदय चाहिए, शुद्ध, बिना क्रोध के बिना लोभ के बिना भय के। भगवान का नाम जपने से व्यक्ति समझ जाएगा, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं है, प्रहलाद महाराज ये कहते हैं। और मन के साथ साथ हमारी इंद्रियां दूषित हैं, ये समग्र मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में खींच रही हैं। जिह्वई कतो चित्त विकर सतिमा वितृप्ता शिष्णो न्यतस्तदुगुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणो न्यतश्चपल दृक् क्वच कर्म शक्ति बहुया सपत नैव गेह पतिम लुनन्ति। मन तो बस में है ही नहीं, मन दूषित है, इसके साथ साथ जिह्वा, जिह्वा हे अच्युत एकतः मा माम विकर्षती, मेरी जीभ है नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों को खा करके भी तृप्त नहीं होती है, लोभ इसमें बसा रहता है। तार मध्य जिह्वा आती लोभमय सुदूरमती, ये सुदूरमती है और लोभमय है, कई अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है, और ये खा लें ये खा लें ये खा लें ये खा लें ये अवितृप्ता, तृप्त नहीं होती है। तो अपने विषय के प्रति खींचती है, ये चीज स्वादिष्ट है इसके तरफ खींचती है, विकर्षती जीभ है खींचती है, सारे शरीर को खींच कर ले जाती है, किसी रेस्टोरेंट में कहीं पर खींच करके ले जाती है, ये जीभ खींच करके ले जा रही है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जिह्वा एकतः रसम प्रति विकर्षती, रस के प्रति खींचती है, शिष्णः और जननेन्द्रिय अपने विषय की तरफ खींच करके ले जाता, और त्वक स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करने के लिए ये अपने विषय पर खींच करके ले जाता, उदरम और पेट भूख से संतप्त हो करके उदर तत्काल में जो भी चीज मिले उसको खाने के लिए दौड़ता है। जब भूख लगी रहती है तो उस समय स्वाद अस्वाद का विचार नहीं करता है पेट, पेट चाहता है किसी तरह से भरो इसको, तो तत्काल में जो मिले उसी, तो भूख से व्याकुल होकर के पेट कहीं और तरफ खींचता है, श्रवणम कुतश्चित कान कहीं और खींचता है, अच्छा अच्छा गाना सुनने के लिए भाषण सुनने के लिए ये कान खींचता रहता है, गाना बातचीत और अपने प्रिय के बात अपनी प्रिया के बात को सुनने के लिए कान खींचता है, इधर चलो ये सुनो ये सुनो, और कितने लोग तो घंटों घंटों फोन पर बस बात करते रहते हैं। फोन की जरूरत इतना बिजनेस में नहीं है, जितना हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए है, कोई उसका फल नहीं है, केवल पैसा बर्बाद होता है। लेकिन कान सुनना चाहता है, कान सुनना चाहता है। बिजनेसमैन उतना फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना कि प्रेमी लोग करते हैं, है ना? आधा घंटा एक घंटा तो उनके लिए हम लोग को समाहूत करना मतलब एक मंगल आचरण है, पुरस्चरण है। आधा घंटा एक घंटा तो कुछ लोग तो दो दो चार चार घंटा बात करते रहते। ऐसा कान जो इस प्रकार की बातों को सुनना चाहता है वो भागवत सुन करके क्या प्रसन्न होगा? वो सुनेगा ही नहीं, वो तो सोचेगा कि वक्ता कब थकेगा, कब बंद करेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक कथा कहे छोटी सी। एक साधु कथा कह रहे थे, रामायण की कथा कह रहे थे। बहुत देर तक बैठे रहे एक व्यक्ति, और सब चले गए ये कथा कह रहे थे, तो एक व्यक्ति बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा। तो कथा के बिल्कुल अंत में जब सब चले गए वो बैठा रहा, तो वो पूछते हैं, धन्य है आप, आपकी कथा में इतनी रुचि है, मेरे कथा में किस पॉइंट पर आप इतने मुग्ध हैं, कौन सी बात अच्छी लग रही? तो वो कहे कि मैं तो कथा कुछ सुना नहीं, स्वामी जी जिस कंबल पर आप बैठे हैं वो मेरा है, तो मैं सोचता रहा, यही प्रतीक्षा करता रहा कब आप उठेंगे, मैं अपना कंबल ले जाऊंगा। अरे बाप, ये कथा श्रवण की तत्परता है। कथा में एक बार वे कहते हैं कि एक रामानंदी वैष्णव थे, कथा कह रहे थे, खूब रामायण की कथा कह रहे थे। एक बूढ़ी माता जी कथा में बैठी थी, वो खूब रो रही थी कथा में, सिसक सिसक करके रो रही थी। तो कथा खत्म होने पर उस बाबा जी ने पूछा कि माता जी आपको किस बात से कथा में इतना आनंद आ रहा था कि आप रो रही थी? तो वो कहती है, महाराज मेरा एक बकरा भूल गया है, खो गया, बहुत खोजी नहीं मिल रहा है। आप जब कथा कहते थे और आपकी दाढ़ी जब हिलती थी तो मुझे बकरे की बहुत याद आ बहुत याद आ रही थी, जैसे जैसे याद आती थी मैं रोया करती। आपकी हिलती हुई दाढ़ी से बकरे के स्मरण का उद्दीपन हो रहा था, तो मैं बकरे की याद करके रो रही थी। वास्तव में मन यदि समाहित नहीं है, भगवान के भक्तों का संग नहीं हो रहा है अच्छा से, तो कथा सुन करके भी व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाएगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरी जीभ अपने तरफ खींचती है रस के तरफ, शिष्य अपने तरफ, पेट अपने तरफ और त्वग इंद्रिय अपने तरफ, कान अपने तरफ, घ्राण अपने तरफ सुंदर गंध के लिए, चपल दृक और चंचल नेत्र किसी रूप के लिए अपने तरफ खींचता है, और कर्म शक्ति और कर्मेंद्रियां पांच ये भी अपने तरफ खींचती। पैर कहीं धो करके ले जाना चाहता है शरीर को, तो कहां ले जाना चाहता है? ये नहीं कि कहीं कथा में या मंदिर में जाए, ये अपने जगह पर खींच करके ले जाता है, हाथ वहीं पर काम करता है, वाणी बोलती है, और इस तरह से पांच कर्मेंद्रियां हैं ये सब मुझको इस तरह से खींच रही हैं अपने अपने विषयों में, जैसे किसी पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों, मान लीजिए 10 स्त्रियां हैं, और वो कहीं बाजार से या बाहर ऑफिस से आता है, तो 10 स्त्रियां जो सौत हैं परस्पर, तो उसको अपने घर में खींचती हैं, अपने घर में खींचती हैं, यहाँ चलो यहाँ चलो, कुछ लाए हो तो हमको दो, तुम उसके घर में मत जाओ, हमारे घर में चलो। तो दसों दस हाथ पैर कुर्ता सब पकड़ ली है, तो उसको लुनंती त्रुटयंती उसको तोड़ देती हैं, नोचती हैं चारों तरफ से, हमारे यहाँ चलो हमारे यहाँ चलो। जैसे गेहपति की परिवार के स्वामी की यह दशा, ऐसे देहपति की भी यही दशा। देह में बैठा हुआ आत्मा अब आंख की मांग को पूरा करेगी, कान की मांग को पूरा करे, जिह्वा के मांग को, शिश्न के मांग को, किसको किसको पूरा करे। आंख कहती है रूप देखो, और जिह्वा कहती है चलो खाओ होटल में, घर पका, घर पर पकाते हुए सूखा रूखा रहता है, चलो रेस्टोरेंट में, और दिन नहीं तो कम से कम संडे को चलो, ये जिह्वा खींचती है ना। और भी कान खींचता है कि इधर सुनना है इधर सुनना है। जैसे दस सौते हैं और दसों अपने अपने घर में किसी गेहपति को, घर के मालिक को खींचे, वो दशा हमारी है। जीवात्मा को ये सब नोच देती है, खींचती। एक बार हमने ड्रामा में देखा था, जो जोकर था वो पति बना हुआ था, और जो नाचने वाले थे लौंडे थे स्त्री के वेश में, स्त्री के रूप में वो नाच रहे थे, तो वही सौत का पाठ कर रहे थे। तो आया कहीं से बाजार से अटैची ले करके, कोई सामान ले करके, तो जाना चाहता था एक स्त्री के घर पर। तो गांव में बांस की सीढ़ी होती है, देखे है ना सीढ़ी, तो उस पर वो चढ़ रहा था कि कोठे पर जो रहती है उसकी पत्नी उसके पास जाएगा। तो ऊपर जा रहा था तो ऊपर वाली हाथ पकड़ ली कि ठीक है आओ आओ, तब तक नीचे दो तीन लगी, वो नीचे खींचने लगी। हाय 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 छोड़ो छोड़, लेकिन दो ऊपर खींच रही थी बांह पकड़ करके, नीचे खींच रही थी, कोई कुर्ता खींच रही थी, कोई कुछ बांह, कोई कुछ, वो लगा रोड़ने। तो उस समय तो बचपन में हम देखे तो हम सोचे कि सचमुच के इसको सब खींच रही है, ये नहीं समझे कि नाटक हो रहा है। वाह हया 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 करने लगी, करने लगा वो व्यक्ति, इसका तो पर्दा गिर गया। एक स्त्री उसमें, अब वो दुखी हो गई, उसके यहां नहीं गया, ये नहीं गया, झगड़ा होने लगा। तो वो भोजपुरी में गाई थी स्त्री, पियावा ठीक न कैला, हमारा ऊपर सवतिया लैला, घर में मोल विपतिया लैला न। ठीक नहीं किया आपने, सवत लाया ये किया ये किया। तो सौतों को एक दूसरे सौत से कोई प्रेम नहीं होता है। ये आंख, इसी तरह ये जो इंद्रियां हैं इनको सौत कहा गया। आंख नहीं चाहती है कि जिह्वा को कुछ खाने को मिले, इसको मिले या ना मिले हमको देखने को मिलना चाहिए, ये रूप की तरफ खींचती है। कान को ये नहीं चाहिए कि रूप चाहिए या भोजन चाहिए, हमको शब्द चाहिए सुनने के लिए खींचती है। इसी तरह और इंद्रिया अपने अपने विषयों में तरफ खींचती है। तो जिसकी ये हालत है ऐसी दशा में भगवान की भक्ति क्या करेगा, कैसे अच्छा जीवन जिएगा जिसको दस ओर से लोग नोच रहे हैं खींच रहे हैं। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, एवं स्वकर्म पतितम भवभय तरण्य अनुन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन जन्म स्वपर विग्रह भय रमत्रम हंते ति पार चर पिपृहि मूढ मध्यम मध्य। इस प्रकार हे प्रभु, मैं इस भवभय तरणी में गिरा हूं, जन्म गिरा हमने सभी लोग, और एक दूसरे के जन्म मरण असन भीत से भयभीत हैं, और किसी को अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं, अपना समझते हैं तो उससे मैत्री है और पराया समझते हैं तो उससे वैर है। आप इस भवसागर से परे हैं, पार हैं, आप वैकुंठ में रहते हैं। हे पार चर, जो पार में विचरण करे इस संसार से, वो है पार चर। प्रिय हमको, हमारा पालन कीजिए, मैं मूढ़ हूं। हे प्रभु, अब तो पालन कीजिए, मन बहुत दुख भोग लिया। आप सबको पार कीजिए, तो मानो भगवान ये कहें कि एकेन मया कथम सर्वो जनस्तारणीय, प्रहलाद मैं अकेले एक व्यक्ति हूं, सबका उद्धार मैं कैसे कर सकता हूं। तब कहते हैं को नतेखिल गुरो भगवन प्रयास उत्तारणस्य भव संभव लोप हेतु तो, मूढ़े सुवै महदनुग्रह आर्थ बंधो किं तेन ते प्रिय जनाननुसेवताम नः। हे अखिल गुरु, हे सबके जन्मदाता, सबके पोषक, सभी जीवों का पालन करने में, सभी जीवों को भवसागर से पार करने में आपको क्या परिश्रम है, कोटि प्रयास, कौन ज्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान से आग्रह किया सबको तार दीजिए, कोई जन्म मृत्यु में न रहे, कोई दुखी न रहे। तो भगवान कहते हैं कि मैं अकेले कैसे सबको तार सकता हूं। तो इस पर कहते हैं कि हे भगवान, इस जगत से जीवों का उद्धार करने में आपको कौन प्रयास करना पड़ेगा। भव संभव लोप है तो आप तो संसार की सृष्टि करते हैं, सारे जीवों का देह बनाते हैं, भोग बनाते हैं और सबका पालन करते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। इसमें इतना आप मेहनत करते हैं, क्या इससे ज्यादा मेहनत पड़ेगा आपको इनको अपने धाम में ले जाने में। इस प्राकृत जगत में इन जीवों को बहुत कष्ट होता है, रोग दुख जन्म मरण ये सब, सबको अपने धाम में ले चलिए। और प्रहलाद महाराज के हट से भगवान ने एक ब्रह्मांड के जीवों को तार दिया, ये कथा है। तो आपको क्या प्रयास है, इतने लोगों को जन्म देना, खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना फिर मारना कंट्रोल में रखना, इसमें तो ज्यादा परिश्रम है। और अपने धाम में ले चलिए, आपको भी कोई परिश्रम नहीं रहेगा, आनंद से सब रहेंगे, वहां कोई गड़बड़ करता नहीं है। यहाँ तो सबको जन्म देना, मेंटेन करना और फिर कंट्रोल में रखना, ये तो बहुत परिश्रम है इसमें। यहां से सबको हटाइए, अपने धाम में ले चलिए। हे आर्त बंधु, हे दीन बंधु, मूढ़ पर आपका अनुग्रह होना ही चाहिए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद सुनो, हमको तंग मत करो, तुमको और तुम्हारे आदमियों को मैं तार दूंगा, तुमको और तुम्हारे आदमियों को तार दूंगा, और सबके लिए मत कहो मुझे। तब कहते हैं किम तेन ते प्रिय जनान अनुसेवतामना, हम लोग आपके भक्तों का अनुसेवन करते हैं, अनुगामी हैं, सेवा करते हैं, आपके जो प्रिय जन हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम लोग तो उनकी कृपा से अपने आप पार हो जाएंगे, हम लोगों को क्यों पार करने की आप सोचते हैं। भक्तों की सेवा करके हम लोग तो अपने आप पार हो जाएंगे, पर अन्य जो सामान्य पब्लिक है उसको पार कीजिए, अन्य जीवों को पार कीजिए। इस श्लोक में भगवान से प्रहलाद जी कहते हैं कि कोटि प्रयास नहीं, कोनोत्र तेखिल गुरु भगवन प्रयास। हे भगवान, अस्य उत्तारणे, इस विश्व के जीवों को तारने में आपको क्या अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, क्या संसार की सृष्टि पालन और प्रलय से भी ज्यादा मेहनत पड़ेगा आपको। वैकुंठ में स्वाभाविक जीवन है, वहां ये सब खेती फैक्ट्री आदि नहीं चलाना पड़ता है, सहज जीवन है, स्वाभाविक जीवन, प्रत्येक वस्तु चेतन है। यहाँ तो एक काम धंधा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो संसार को जन्म देना, चलाना, नियंत्रण में रखना, ये ज्यादा परिश्रम है, ये बात भगवान से कह रहे हैं। और जब असुर बालकों को उपदेश कर रहे थे प्रहलाद जी, तो कहते हैं कोटि प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतह। हे असुर बालकों, भगवान की भक्ति में क्या परिश्रम है। भगवान से कह रहे हैं कि इन जीवों को तारने में आपको क्या परिश्रम है। और जीव के साइड से कहते हैं कि भगवान के भजन में क्या परिश्रम है, जो आकाश की तरह हृदय में ही विराजते हैं। आकाश सबसे बड़ा है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सुलभ वस्तु है। इधर हाथ कीजिए तो आकाश है, शरीर के चारों तरफ आकाश है, सबसे बड़ा है लेकिन सबसे सुलभ है। ऐसे ही भगवान सबसे बड़े हैं, महान हैं, लेकिन जीव के साथ हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता है और वे प्रिय हैं। कोई जीव से अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमको धन दे, हमको मान दे, तब इस पर कृपा करेंगे, वे परिपूर्ण हैं। तो असुर बालकों से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान के भजन में क्या प्रयास है, कुछ ही प्रयास नहीं है, बहुत आराम से भक्ति होती है। और भगवान को कहते हैं कि जीवों को तारने में आपको क्या परिश्रम। इस तरह से जीव के साथ भगवान का सख्य करा रहे, जीव भगवान को समझे और भगवान जीव की दशा को समझे, दोनों दोनों से प्रेम करें और इस तरह से सुखी हो जाए, जीव सुखी हो जाए। तो बात ऐसी बोलनी चाहिए कि जीवों को भगवान से प्रेम हो, कृष्ण से प्रेम हो, और कृष्ण से ऐसी बात कहनी चाहिए कि उनको दया आ जाए जीवों की दशा देखकर। तो दोनों को दोनों से मेल करा रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज के प्रीचिंग का स्टाइल है। अभी वो भगवान से बात कर रहे हैं, इसके पहले असुर बालकों से बात कर चुके हैं कि क्या भगवान के भक्ति में प्रयास है। दुनिया का काम धंधा करके आदमी मर रहा है, भक्ति में क्या प्रयास है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति में क्या प्रयास है, बोलना कौन नहीं जानता है, बोलना जानते हैं ना, बल्कि शांत कराना पड़ता है, जरा चुप रहिए चुप रहिए। इतना आदमी बोलता है कि ऐसा कभी उपदेश नहीं दिया जाता है कि बहुत देर तक शांत रहे, अब कुछ हल्ला कीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन बोलने वाले को शांत कराया जाता है, अरे चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, ओम शांति ही शांति ही शांति। तो बोलना सभी जानते हैं, बोले जहां नहीं बोलने के लिए कहा जाता है वहां भी बोलते रहते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल कौन नहीं बोल सकता है, सभी बोल सकते हैं। तो बोलना सब जानते हैं और खाना सब जानते हैं, भगवान का प्रसाद खाना है, महाप्रसाद खाना है, यही है भक्ति, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान का नाम बोलना। और अगर शरीर में शक्ति है, पैर में शक्ति है, तो नाचना। लेकिन उसकी अपेक्षा भगवान नहीं करते हैं कि बेचारा कमजोर है तो उसको नाचने के लिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है, नाम जप करे। अगर वो भी नहीं बोलने की इच्छा है तो सुने, सुनना भी भक्ति है। कई लोग काम धंधा से थक करके आते हैं तो उसे बोलने की इच्छा नहीं करती है, तब कोई सीडी लगा करके सुनिए या भक्तों का डायरेक्ट कीर्तन सुनिए, प्रभुपाद जी का मशीन मिलता है उसको सुनना चाहिए, सुने। भगवान को प्रणाम करने की शक्ति है तो प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे, और नहीं तो कम से कम मस्तक भी तो झुकावे। और पढ़ना सभी जानते ही हैं, आजकल निरक्षर कोई नहीं है, तो कुछ गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, जितना ही 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा पढ़े प्रतिदिन, तो इस तरह से जीवन परफेक्ट हो जाएगा, कोई परिश्रम नहीं। हमसे एक व्यक्ति पूछा कि कितना देर गीता पढ़ना चाहिए, तो हमने स्वाभाविक कह दिया कि जितना देर तक एक अखबार रसिक अखबार पढ़ता है उतना देर पढ़ना चाहिए कम से कम। कोई अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ता है तो 20 मिनट आधा घंटा लगा ही देता है, कहीं ज्यादा बड़ा बड़ा पेपर आता है, कई आता है, तो कुछ लोग तो घंटों लगा देते हैं, जो कि बेकार टाइम बिताना है, उसे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। कोई कोई भौतिक जानकारी होती है लेकिन बाकी सब दुनिया भर का कचड़ा, यहाँ ये इसको मारा, यहाँ ये लूट हुआ, यहाँ ये हुआ ये हुआ, यही सब दिमाग में सवेरे सवेरे ठूसते हैं, पढ़ पढ़ करके आँख के द्वारा भरते हैं अपने हृदय। ऐसे लोग क्या भगवान को समझेंगे। तो उनके लिए सबसे आसान यही होगा कि भगवान निराकार है, इसलिए उसका श्रृंगार नहीं करना पड़ेगा, उसको प्रणाम भी नहीं करना पड़ेगा, भोजन भी नहीं खिलाना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए आसान है वही। लेकिन भगवान के रूप को मानेंगे जो वास्तविक है, तो भगवान को फिर भोजन देना, श्रृंगार करना, उनके लिए गीत गाना, उनके लिए अल्टर बनाना, उनको प्रणाम करना, ये सब करना पड़ेगा। इसीलिए आनंद मार्ग, विश्राम का मार्ग है कि भगवान को निराकार मानो, कुछ करो मत, बस हो गया, और एक ध्यान का नाटक करो। उनका ध्यान कर रहे हैं, ध्यान क्या खाक करेगा आदमी, ध्यान जो देखा है जो सुना है उसी का ध्यान आदमी करता है, दिन भर जो देखे हैं सुने हैं बोले हैं ध्यान करने पर उसी का ध्यान होता है। तो भगवान के बारे में जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब ध्यान आएगा। एक छोटा सा बालक हमारे मंदिर में एक बार आया, बिल्कुल छोटा था, तो डेढ़ बज रहा था तो पर्दा बंद हो गया, 1 बजे भगवान शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। तो जब मंदिर में आया तो 2-3 भक्तों ने कहा भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। तो अकस्मात मंदिर में आया था तो वो पूछता है भगवान किधर है, छोटा सा बच्चा पूछा भगवान कहाँ है। तो एक भक्त ने कहा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं इधर पर्दे में है। तो बच्चा सुनते ही साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के तरफ मुंह कर लौटा। यह है भक्ति, कितनी सुगम है अगर श्रद्धा हो तो। श्रद्धा नहीं है तो पहले तो वो फिलोसफिकल गवेषणा करेगा, खोज करेगा कि भगवान है कौन, कहाँ रहता है, क्या स्वभाव है, उसको प्रणाम कैसे किया जाता है। कभी कभी लोग जाते हैं बांके बिहारी मंदिर में, नेता लोग, तो हाथ ऐसे जोड़ लेते हैं और सिर थोड़ा भी नहीं झुकता है, ठीक है उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वास्तविक प्रणाम तो हुआ कि श्रद्धा से भगवान के चरणों में झुकना, मन से झुकना, शरीर से झुकना। एक बार मैं पटना गया था तो बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय नहीं थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी आए थे मंच पर हम लोगों के, तो दीपक जलाना था, भगवान को दीपक दिखाना था, तो उनको बुलाया गया मंच पर। उस मंच पर वहाँ के अध्यक्ष कृष्ण कृपा प्रभु थे और मैं था और राबड़ी देवी उनकी पत्नी उस समय मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर थी, और ये भी थे लालू प्रसाद जी। तो मैंने कहा कि भगवान को पहले प्रणाम कीजिए इसके बाद दीपक दिखाइए। तो कहते हैं नहीं पहले दीपक दिखा लेते हैं तब करेंगे, जो ठीक है जो आपकी इच्छा वही कीजिए। तो दीपक दिखाए, दीपक दिखा करके और ऐसे ऐसे किए। मैंने कहा ऐसे प्रणाम नहीं, जमीन पर माथा रखिए। तो अब सबके सभा के बीच में कहा गया तो जमीन पर माथा रखे, धनुष प्रणाम किए, दंडवत नहीं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, साष्टांग किया जाता है, लोटा जाता है, लोटा जाता है हाथ आगे करके। तो जब वो प्रणाम किए तो कहते हैं भक्ति में भी बहुत मेहनत है। भक्ति में भी बहुत मेहनत है। तो हमने कहा कि जब कुश्ती लड़ते होंगे तो कितना मेहनत किए होंगे, दंड बैठ की ये एक करना है ना। बोले हाँ लेकिन इसमें भी मेहनत है। तो उतना मेहनत करने से तो ब्लड प्रेशर और ये सब भी नहीं होगा, प्रणाम करने से भगवान को डायबिटीज ब्लड प्रेशर सब खत्म हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में आनंद ही आनंद है, श्री प्रहलाद महाराज की बात कह रहे हैं, कोई प्रयास नहीं, तो भगवान ने कहा कि वत्स प्रहलाद त्वाम तावत तारयिष्यामि, मैं तुमको तार दूंगा, इतने से ही कृतार्थ हो जाओ, अब इतना हट क्यों करते हो कि सारे लोगों को मैं तार दूं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं संसार से उद्विग्न नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके लीला कथा महा अमृत में मग्न चित्त हूं, मेरा चित्त आपके लीला कथा में लगा हुआ है, मैं आपके भक्तों के यहां आपकी कथा सुनता हूं और गान करता हूं, तो इस महा अमृत में मेरा चित्त मग्न है। मैं तो उन लोगों के लिए शोक करता हूं जो आपके कथा से विमुख हैं, इस महा अमृत से विमुख। वास्तव में भगवान के नाम का जप करना, भगवान भागवत पढ़ना, भगवान की कथा सुनना, यही महा अमृत है। मैं उनके लिए शोक करता हूं जो इस अमृत से विमुख हैं और विष पी रहे हैं, संसार की चीजें देख रहे हैं। तो जो लोग भगवत कथा से, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या भगवान के नाम से विमुख हैं, उनके लिए मैं शोक करता हूं, मैं अपने लिए शोक नहीं करता हूं, मैं तो महा अमृत में हूं। इसको ऐसे कह रहे, नैव द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद वीर्ज गायन महामृत मग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमुद्धान। मैं उन लोगों के लिए शोक करता हूं जो इस महा अमृत से विमुख हैं और इसके उल्टा ठीक इंद्रियों के भोगों के लिए, माया सुख के लिए, जो सुख नहीं है, भ्रम है, उसके लिए घर गृहस्थी का भार ढो रहे। भरम उद्वहता, ठीक दशा गधों की तरह है। वास्तव गधे बहुत भार ढोते हैं, देखे हैं ना, कहीं लोग ईंट लादते हैं, ब्रिक, कहीं बासमती राइस, कहीं कपड़ा धोया हुआ या गंदा कपड़ा ढोवाते हैं, उससे गधा से ढोवाते हैं। लेकिन बेचारे को इतना कपड़ा ढोता है, उसके लिए एक चड्डी भी सुलभ नहीं, अंडरवियर भी उसको दुर्लभ। दूसरे के लिए कपड़ा ढोता है खूब, लेकिन उसको कपड़ा नहीं मिलता है। दूसरे के लिए बासमती राइस ढोता है, लेकिन अपने थोड़ा घास मिल जाए काफी, भात नहीं मिलता। चाहे चंदन भी ढोवे, फिर भी उसको ललाट पर थोड़ा भी लेप नहीं किया जाएगा। दूसरे के लिए ढोता रहता है, साबस साबस। ये घर गृहस्थी एक बहुत बड़ा भार है। भगवान के भक्ति का सुख आदमी नहीं लेता है और परिवार चलाने में दम दम निकल जाता है, इस भार को ढोता रहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं ऐसे गधों के लिए शोक कर रहा जो महा अमृत है, अमर मार्ग है, भगवान की भक्ति उसको नहीं करते हैं, और इंद्रियों के सुख के लिए जो माया सुख है, सुख नहीं है, देखने में लगता है कि सुख है, लेकिन उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, मैं तुमको मुक्त कर देता हूं, और लोगों को तत्वेता लोग उपदेश करेंगे, और भक्त लोग उपदेश करेंगे, चाहे मुनि जन उपदेश करेंगे, उनको वे लोग तारेंगे, मैं तुमको तब तक तार देता हूं और दूसरों को छोड़ देता हूं कि वो लोग उपदेश करेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते, नहीं 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 उपदेश करेंगे, प्रायेण देव मुनयो स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। हे देव, प्रायः जो मुनि लोग हैं वे अपने मुक्ति के फेर में हैं, स्व विमुक्ति कामा, वे कथा नहीं कहते हैं, वे उपदेश नहीं करते हैं, कहीं बैठ करके बस ध्यान करते हैं। ऐसे एक दो नहीं, प्रायः सभी मुनि ऐसे ही हैं। कौन प्रचार करता है, प्रीचिंग कौन करता है, ये केवल प्रभुपाद जी की है ना, या उनके अनुगामी लोग करते हैं, और बाकी लोग तो स्व विमुक्ति कामा, अपने विमुक्ति की इच्छा से बिजने चरंती मौनम, वो एकांत में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं और भी मौन ले लेते हैं। प्राय ऐसे साधु ढोंगी कई होते हैं जो मौन रहते हैं। ये तो ठीक है कि फालतू नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलने लायक चीज को भी नहीं बोल पाते हैं। न भगवान का जप करते हैं, न भगवान भागवत पढ़ते हैं, न गीता पढ़ते हैं, मौन मौन साध लिए तब उसी दिन सिद्ध हो गए। अगर कोई मान लीजिए महासंसारी व्यक्ति बाजार में जाकर के छौर करा ले, आठ आना लगेगा, चाहे इस समय मान लीजिए 4-5 रुपया लगेगा, छौर करा ले, गेरुआ कपड़ा रंग ले और चल दे और बोले नहीं बोले तो उसको लोग सिद्ध समझ लेते हैं, केवल संकेत करे, ये करे वो करे। अगर बोलेगा तब तो पता लग जाएगा कि ये मूर्ख है लेकिन नहीं बोले तो जनता समझेगी पहुंचे हुए महात्मा है। जाने सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, ऐसा कहा। जो जान जाता है वो बोलता नहीं है, अगर बोल रहा है तो इसका मतलब कि अभी जानता नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायः ये जो मुनि लोग हैं ये एकांत में चले जाते हैं, मौन रहते हैं और अपने मुक्ति के फेर में रहते हैं, जनता को मुक्त नहीं करना चाहते हैं। तो दुनिया जाए नरक में जाए हमको इससे क्या मतलब है, केवल इस कान वाले प्रीचिंग करते हैं। तो वो भी कितने हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं वो भी कितने हैं, बहुत कम है। इसीलिए अच्छा दूसरी बात यह है कि किसी मुनि उनी में कोई दम नहीं है, आप ही शरण है इनकी, बस आप कीजिए, आप इनको तारिए, आप अपने धाम में ले जाइए। पता नहीं मुनियों के उपदेश का अर्थ असर होगा कि नहीं होगा तो नैतन बिहाय कृपणान विमुक्त है एक, मैं इन दिन ही इन लोगों को छोड़ करके एक अकेले मुक्त होना नहीं चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं ठीक है तो दूसरे लोगों को उपदेश करने, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपस्य, मुनि लोग उपदेश नहीं करते हैं किसी और की शरण लो तो कहते हैं नान्य आपके अलावा कोई शरण नहीं है, आपके अलावा कोई समर्थ नहीं है, शरण नहीं है, प्रभु नहीं है, बस आपके चरणों में प्रार्थना है, आप सबको तारिए, आप सबको अपने धाम ले जाइए, सबका दुख मिटाइए। इस तरह श्री प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। इनकी प्रार्थना से भगवान ने एक ब्रह्मांड के समस्त जीवों को मुक्त कर दिया था, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है। किसी कोठरी में अगर सरसों का दाना रखा हुआ है उसमें से एक दाना निकाल दिया जाए तो कोई क्षति नहीं है, एक ब्रह्मांड के जीवों को भी भगवान ने वैकुंठ भेज दिया तो उससे कोई घटी घट नहीं गया। तो प्रहलाद महाराज का इतना उदार हृदय है, सब पर दया दृष्टि रख रहे हैं, सबका हित चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से अनेक श्लोक हैं, इसको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में भगवान ने इनसे कहा कि वर मांगो, इन्होंने वर मांगा कि मेरे पिताजी को तार दीजिए, आपको गाली दिए, मैं आपका भक्त था इसलिए मुझको सताए, इन पर पाप लगा है। तो भगवान ने कहा कि वो तो तर गए। इस तरह से प्रहलाद महाराज को वरदान देकर भगवान शांत हो गए थे और सब देवता आकर के फिर तब भगवान का स्वागत करने लगे। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी शांति से सुना इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। और धन्यवाद है इस सिकंदराबाद मंदिर के कृष्ण भक्तों को जिन्होंने आयोजन किया, और उन भक्तों को जिन्होंने इस आयोजन में तन मन धन से सहायता किया, यहाँ के कांग्रेगेशन, यहाँ की जनता, सबको भूरी भूरी धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ।
तो कुछ बोलेंगे और कुछ भक्त लोगों को ये गार्लैंड और प्रसाद दिलवाएंगे आपसे 5-10 मिनट
तो जल्दी कीजिए।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ये कथा चार दिन का आयोजन सिकंदराबाद स्थान के प्रांगण में हुई। हम सभी भक्तों से क्षमा प्रार्थी उनको कुछ सब सुविधा हो, क्योंकि ये पहली बार इस कथा का आयोजन किया गया है और ये कथा चार दिन की कथा है। और मैं सदैव प्रभु के हम लोग सब कथा के जो भी सहयोगी हैं सदैव प्रभु के नेतृत्व में ये कथा का आयोजन हुआ है और उनके साथ नील माधव दास प्रभु और सारे ब्रह्मचारियों का बहुत सहयोग रहा है। मैं सदैव दास प्रभु को महाराज से गार्जियन स्वीकार कर आशीर्वाद रूप में
ले ले ये माइक काम कर रहा है।
थैंक यू प्रभु।